इंडिया के अंदर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्रोकरेज पे करते हैं लोग हर साल।
यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट मिडलमैन, तो ये लोग रिवोल्ट नहीं करते?
बहुत ज्यादा रिवोल्ट करते हैं। हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ, 50-60 ब्रोकर आए, उन्होंने हमारे ऑफिस पे अटैक कर दिया, पुलिस बुलाना पड़ा, हमें ऑफिस रातों रात खाली करना पड़ा वो हमें ऑफिस। आप हिस्ट्री भी देख लो, इट जब कभी कोई प्लेटफॉर्म ने बहुत वैल्यू ऐड करी और बहुत लार्ज बन गया ना, जब कभी वो वैल्यू एडिशन कम हो गया या उसने मिसयूज करना शुरू किया है, कुछ ही साल लगे हटने में।
ऐसे नहीं लगता कभी कि दैट यू प्रोबेबली आर एलिमिनेटिंग जॉब्स फॉर फ्यू पीपल? गोइंग टू अ न्यू सिटी, फाइंडिंग अ हाउस ऑन रेंट और बाइंग अ न्यू हाउस, फाइंडिंग एन ऑफिस स्पेस, ऑल ऑफ दिस इज वेरी पेनफुल एंड इट्स इवन वर्स व्हेन यू हैव अ बैड ब्रोकर। That's why this startup decided to eliminate brokers completely and decided to make renting buying experience very smooth for customers. In today's episode, we spoke to the founders of India's first real estate unicorn, No Broker. Amit Agarwal and Saurabh Garg spoke about how to make money through properties, and even if you don't have any expertise, how do you manage your properties? Who should invest in properties? What kind of properties you should invest in? What happened to No Broker's office when traditional brokers mobbed them? Which city is giving the maximum return in the real estate market as of now in India? And how do founders of a $1 billion startup make money? Watch out this episode till the end, because for the first time, we've tried to understand real estate market in India, the opportunities to make money through properties and challenges of the biggest money-making industry in the growing economy. Both of you were in different companies, correct, doing different jobs, different profiles. पहले तो ये कैसे आया कि हम दोनों अब real estate market में आएंगे? हम दोनों ही साथ में आएंगे, ये कैसे, ये क्या डिसाइड हुआ?
तो ब्रोकर्स ने हमें काफी परेशान किया। आई थिंक दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड।
एक तो ये है कि बेसिकली पैसे बहुत ज्यादा ले लिए ब्रोकर ने, दूसरा ये है कि कुछ शहरों के अंदर वो बेसिकली रिपीट वापस पैसे मांग रहा है। एंड द अदर टू प्रॉब्लम्स व्हिच फॉर एग्जांपल आई फेस्ड वाज दैट आई टुक अ ब्रोकर इन कलकत्ता एंड आई गिव हिम सम एडवांस फॉर सम फर्नीचर एंड ही हैज वैनिश्ड विद दैट मनी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रोकर नहीं होते, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे ही हुआ कि पैसे लेके बेसिकली भाग गया और फिर मैं उसे कॉल करते जा रहा हूँ कि भाई वो पैसे वापस कर दो अगर फर्नीचर नहीं देना तुम्हें। एंड देन आई फेल्ट इतनी इसको इतना ब्रोकरेज दे एक महीने का, फिर भी ऐसा बिहेवियर। फिर एक बार बैंगलोर के अंदर जब नए व्हेनेवर यू कम एज अ न्यू पर्सन टू अ सिटी एंड व्हेन यू से दैट ओके आई वांट टू, व्हेन यू गो टू अ ब्रोकर ही विल जस्ट हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद यू, हाँ सर कहाँ से हैं आप, सो यू आर जस्ट हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बट ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट योर बैकग्राउंड इज, हाउ मच कैन यू पे एंड आर यू न्यू टू द सिटी। इन दैट कॉन्वर्सेशन ही इज जजिंग दैट एंड द मोमेंट ही नोस कि हाँ आप नए हो, देन ही विल से कि यार ये छत पे जाके ना ग्रीन कलर का जो छोटा सा वो है रूम छत पे ग्रीन कलर का पेंट का, ये 25,000 का है। क्यों? क्योंकि बैंगलोर में ऐसे ही होता है, उसको पता है कि आप तो नए हो। तो अनटिल यू रिवोल्ट कि नहीं यार तुझसे तो नहीं लूंगा, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, देन ही विल शो यू सम गुड हाउसेस।
पूरी का पूरा जर्नी खराब है, मतलब पूरी की जर्नी में यू विल फाइंड देयर टू मेनी फ्रिक्शन पॉइंट्स कि आपको घर, आप बोलोगे रिक्वायरमेंट कुछ और दिखाएंगे पहले, जैसा मैं तो सेइंग कि पहले घर खराब दिखाएंगे, एट सम पॉइंट से ठीक है अब अच्छा घर दिखाते हैं आपको, तो वो सब है। और दूसरा जैसे जब हम IIT में थे तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था, ब्रोकन एक्सपीरियंस अगेन सेम थिंग, या अगर आपको कोई कुछ भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है तो बैंक जाना पड़ रहा है। एंड वी सॉ कि अब 2012-13 में एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन, यू आर बुकिंग ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन, यू आर बुकिंग फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन, द एंटायर बैंकिंग इंश्योरेंस एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन, स्टॉक वॉज ऑनलाइन। रियल एस्टेट अभी भी पूरा का पूरा ऑफलाइन था और पूरा का पूरा ब्रोकन एक्सपीरियंस था। सो वी सेड व्हाई डोंट एंड ऑल दोज प्लेसेस ऑल्सो द रोल ऑफ द मिडल मैन हैड कम डाउन ड्रास्टिकली बिकॉज नाउ द टेक्नोलॉजी वॉज सॉल्विंग इट, एंड रियल एस्टेट में ऐसा था ही नहीं। अभी भी आप अगर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं किसी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, तो आपको अल्टीमेटली ब्रोकर ही मिलने वाला है उधर जो आपको ले जाके घर दिखाने वाला है। सो वी सेड कैन दिस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बी रिजॉल्व, क्योंकि अगर आप सपोज थर्ड फ्लोर पे रह रहे हो और फिफ्थ फ्लोर पे एक घर है जो कि अवेलेबल है, आपको ब्रोकर वही घर दिखाएगा और उसका चार्ज करेगा। सो कैन दिस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बी रिमूव्ड एंड यू कैन कनेक्ट दोज टू पीपल डायरेक्टली, दैट वॉज द एंटायर आइडिया।
Now you're saying that you're one stop solution for everything.
Yes.
But don't you think as a startup, if you focus on a lot of things, you lose out on your focus?
नहीं, ऐसा नहीं है, because क्या है कि अगर customer के हिसाब से देखो ना, तो उसकी पूरी journey है, उसको ऐसा नहीं है कि घर ढूंढना है, उसको rental agreement भी कराना है, अगर वो घर खरीदा है तो sale agreement भी कराना है, sale deed भी करना है, अगर वो घर छोड़ के जा रहा है तो उसको पेंटिंग के पैसे देने ओनर को, या फिर ओनर को पेंटिंग करानी है, या नया घर के अंदर आ रहा है तो डीप क्लीनिंग करानी है, घर खरीदा अगर खरीदना है तो जब तक होम लोन नहीं होगा आप पैसे कैसे दोगे? आपको बिल्डर को पैसे देने हैं या रीसेल को देने हैं, और अपना पूरा सामान शिफ्ट करना है, तो पैकर मूवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों पार्टी जुड़े और जितना भी कस्टमर को फ्रिक्शन है इन एरियाज में वो सब सॉल्व हो। और ये सभी ब्रोकन है इंडिया में। आप देखो पैकर मूवर की अगर मैं आपसे पूछूं ना कितनी ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, आप दो या तीन नाम दे पाओगे, और वो तीनों नाम ना इंटरसिटी के होंगे, इंटरसिटी का उसमें से एक भी नाम नहीं होगा। उसी तरह आपसे पूछे रेंटल एग्रीमेंट की कोई कंपनी है क्या, आपको नहीं पता होगा। उसी तो पेंटिंग में पूछ लें तो शायद आप एक या दो कंपनी का नाम बता पाओ। तो एवरीथिंग इज सो ब्रोकन इन द कंट्री। सेल एग्रीमेंट के लिए आप किसी लॉयर को गूगल पर सर्च करोगे, पता नहीं वो कितना विश्वसनीय है। सो व्हाट वी रियलाइज इट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ब्रोकन, सो इट मेक्स सेंस टू स्टिच ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड गिव देम ऑन अ अला कार्ट बेसिस। अच्छा आपको जो पसंद है आप ले लो।
नहीं, और ऑल्सो ये मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं। दिस इज ऑल योर वन जर्नी, दिस इज रियल एस्टेट जर्नी ओनली। कि आपने घर ढूंढना शुरू किया, वहाँ पे आपको कुछ चाहिए, आपने घर मिल गया आपको तब कुछ चाहिए, घर शिफ्ट होने के बाद कुछ चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली वन जर्नी विच वॉज बाय व्हाटएवर डिजाइन इट वॉज ब्रोकन इन टू डिफरेंट पीसेज एंड ऑल दीज डिफरेंट पीसेज वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। बट आइडियली तो आप अगर आप अमेजोन पर जा रहे हैं कुछ खरीद रहे हैं तो ऐड टू कार्ट से लेके डिलीवरी तक आपको अमेजोन से ही चाहिए ना सब कुछ, कि मेरे घर तक आ जाए। सेम हमें लगता है कि रियल एस्टेट जर्नी भी एग्जैक्टली सिमिलर ई कॉमर्स टाइप है कि आपने करा और पूरा एंड टू एंड सब एक जगह से हो जाए। ऐसा नहीं कि एक चीज कच करी दूसरी जगह के लिए आप जजाइल पे जा रहे हैं, तीसरी चीज के लिए आप गूगल सर्च कर रहे हैं। शुड नॉट बी लाइक दैट, एवरीथिंग कैन हैपन एट वन प्लेस।
आई थिंक कि अगर यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट मिडिल मैन तो ये लोग रिवोल्ट नहीं करते।
बहुत ज्यादा रिवोल्ट करते हैं। हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ, 50-60 ब्रोकर आए, उन्होंने हमारे ऑफिस पे अटैक कर दिया। आपको पता होगा स्टोरी,
ब्रोकर्स फिजिकली आए एंड दे ट्राइड टू ब्रेक इनटू द ऑफिस, हर्ट द एम्प्लॉइज, ब्रेक कंप्यूटर,
एकदम पुलिस को बुलाना पड़ गया। हमें लगा कि प्रोसेशन हो रहा है और 50-60 ब्रोकर के ऑफिस सामने इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहीं हमारा ऐड देख लिया, वो चाहते थे कि हम ऑफिस तोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। उनको क्लाउड का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई टूट भी गया तो हम तो लैपटॉप नया लेके वापस शुरू कर देंगे। पुलिस बुलाना पड़ा हमें, ऑफिस रातों रात खाली करना पड़ा वो हमें ऑफिस, फिर हम दूसरे ऑफिस पे शिफ्ट हुए।
सी एवरी स्टार्टअप नीड्स पीपल हु प्रमोट देम, राइट? कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके बारे में अच्छी बातें करें, बट यहाँ पे तो पूरा कम्युनिटी जो एस्टैब्लिश्ड है वो आपके खिलाफ ही करने रेडी है कि हम बस इनको बंद।
ये मेरे ख्याल से तो कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन है ये, कि अगर आप कुछ भी डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो उसका आपको रिवोल्ट मिलेगा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आल्सो हैपेंड, कि हमने करना शुरू किया, हजारों लोगों को घर मिल रहा है बिना ब्रोकरेज पे करे हुए, तो एक 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 उसका बैकलैश आया। बट आल्सो वी रियलाइज्ड कि यार हम लोग कुछ सही कर रहे हैं, तभी यू नो थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट।
स्कैर्ड लाइक दिस, डज दिस थिंग स्कैर यू एट ऑल?
उस टाइम पे तो स्कैर हो ही थे हम, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि वो तो तब तो बेसिकली एकदम मारामारी होने ही वाली थी, तो वायलेंट हो जाता तो बहुत ही दिक्कत होती। बट अदर वे टू ऑल्सो सी इट इज कि आप ये चॉइस ना कस्टमर के पास जाने दो। देखो तो हम ये नहीं बोल सकते यहाँ बैठ के कि नो ब्रोकर बेटर कंपनी है या ब्रोकरेज बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी का व्यू ये नहीं यार, ब्रोकरेज देना अच्छी बात है। सो फाइनली हम ये कहना चाहते हैं भी कस्टमर के पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस आप डिलीट मत करो कि अच्छा नो ब्रोकर नहीं रहेगा या ब्रोकर नहीं रहेगा। जो अच्छे ब्रोकर्स हैं कंट्री में ऑफकोर्स उनको बिजनेस मिलेगा। जैसे आपने बोला कि ब्रोकर के साथ दो प्रॉब्लम थी, पर अगर कोई ब्रोकर अच्छा होगा वो दो प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको, आप उसे यूज कर लो। तो जो अच्छे ब्रोकर्स हैं दे विल नेवर लूज बिजनेस। हम वैसे ही बोल रहे हैं कि हम कस्टमर को दो ऑप्शन दे रहे हैं, हम एक और ऑप्शन दे रहे हैं। और अब आज देर आर 1.8 करोड़ क्यूमुलेटिव कस्टमर्स हु हैव कम ऑन नो ब्रोकर रजिस्टर्ड एंड यूज नो ब्रोकर इन द पास्ट 8 ईयर्स। सो वी डिड समथिंग विच बेसिकली हेल्प देम,
विच इज हेल्पिंग देम। ऐसे नहीं लगता कभी कि दैट यू प्रोबेबली आर एलिमिनेटिंग जॉब्स फॉर फ्यू पीपल? Do you ever feel that? You're helping a lot of people, okay?
Yeah.
But because of the tech, you are eliminating few people's job. Like they don't know anything.
हमें लगता है कि जो अच्छा ब्रोकर है और वो वैल्यू एड कर रहा है कस्टमर की जर्नी में, आई थिंक वो तो रहेगा हमेशा। बट जो आई थिंक सिर्फ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पे प्ले कर रहा है, जो कि यू नो हु इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू, हु इज नॉट हेल्पिंग द कस्टमर, दोज आर द पीपल हु विल प्रोबब्ली गेट लेसर बिजनेस। एंड ऐसा तो आप हर एक मार्केट में ऐसा होगा ही कि whoever brings efficiency, who does a better job, वही आदमी थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। इट्स नॉट दैट वी हैव डन समथिंग डिफरेंटली। हम नहीं करते तो अच्छे ब्रोकर ही उनकी उनकी जॉब खाते।
और आप जनरली इकोनॉमी का भी देखो ना, आज से 100-200 साल पहले एवरीथिंग वाज एग्रीकल्चर, पर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आफ्टर थिंग्स बिकेम मोर एफिशिएंट देन दोज जॉब्स गॉट रिमूव्ड बट समथिंग एल्स वाज क्रिएटेड व्हिच वाज इवन मच मोर वैल्यू एडिंग मच मोर लुक्रेटिव. तो जो अगर सिस्टम में पूरी इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाना बेटर करना कस्टमर को बेटर क्वालिटी और कम प्राइस पे देना इज ऑलवेज गुड फॉर बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द सोसाइटी इन जनरल.
हम लोग तो इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर हमारे थ्रू हर महीने करीब 50,000 लोगों को घर किराए पे मिलता है, 5,500 लोग घर खरीदते हैं, हम उनकी जेब में वो वापस पैसे डाल रहे हैं जो कि वो ब्रोकरेज के लिए खर्च कर रहे थे, विच दे कैन प्रॉब्ली यूज फॉर मोर थिंग्स अदर पर्पसेस.
तो कॉमन मैन का जो फायदा हुआ वो भी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना. वो इतने सारे लोगों का मतलब इंडिया के अंदर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्रोकरेज पे करते हैं लोग हर साल, 1.5 लाख करोड़. सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है. और ये सब ब्रोकरेज लोग कॉमन लोग पे कर रहे हैं, हमारे और आपके जैसे लोग. अगर ये हम लोग ब्रोकरेज कम कर सकें तो इससे बड़ा अच्छा काम क्या होगा.
सो टेक में ना, मैं भी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि पीपल स्टार्ट टेक बिजनेसेस बिकॉज दे वांट टू यूज द पावर ऑफ टेक फॉर बेटरमेंट ऑफ द साइड, टेक फॉर गुड, राइट. बट ओवरऑल वो जर्नी में ही रियलाइज करते हैं एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद कि उन्होंने टेक फॉर कंसोलिडेशन बना दिया, कि वो कंसोलिडेट करते चले गए तो जो एम्पावर करना था लोगों को वो पावर में कन्वर्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल ऊबर ने जैसे स्टार्ट किया, दैट वाज फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल ड्राइवर्स टू गेट बेटर मनी, टू बेटर जॉब, बेटर राइज, एफिशिएंसी. बट वो अब इतना बड़ा कंट्रोलिंग पावर बन गया कि उनके बिना ड्राइवर्स हैंडीकैप्ड है, राइट. अमेजोन ने जैसे सेलर्स को एम्पावर करना स्टार्ट किया, बट वो इतने सारे सेलर्स का ग्रुप बन गया कि अमेजोन कंट्रोल्स द पावर. डू यू थिंक जैसे विथ मूव पैकर्स एंड मूवर्स है, आपका पेंटिंग सर्विसेज है और भी डीप क्लीनिंग सर्विसेज है, इन सब की यू आर बिकमिंग सच एन एग्रीगेटर दैट एट वन पॉइंट यू विल कंट्रोल द पावर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी एंड देन इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रीट इट दिस वे.
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना आप हिस्ट्री भी देख लो. इट जब कभी कोई प्लेटफॉर्म ने बहुत वैल्यू एड करी और बहुत लार्ज बन गया है ना, जब कभी वो वैल्यू एडिशन कम हो गया या उसने मिस यूज करना शुरू किया है, कुछ ही साल लगे हटने में. Just 15-20 years back, I think when we were studying, Microsoft was everything to us. कभी किसी सोचा नहीं था कि Microsoft के ऊपर भी वो कंपनी आ सकती है. पर उसके बाद आप देख लीजिए, Google देख लीजिए, Apple देख लीजिए. तो ऐसा है नहीं कि I'm just saying that overall in a free economy, customers get what they want, and if any platform becomes too strong and misuses that position anyway, it's just a matter of time when it disintegrates and something better comes. तो अभी हिस्ट्री में तो इससे तो लेसन यही है.
एंड अगर आप अभी भी देखेंगे कि जो हमारे साथ जो काम करते हैं, जब पैकर्स एंड मूवर्स जो भी हमारे ये हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इन अ वे दे हैव अ ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज उन्होंने गाड़ी खरीदी हुई है, उनके पास लोग हैं. सो द मोर बिजनेस वी आर एबल टू गिव देम द मोर प्रॉफिट्स दे विल मेक. एंड हमारा ऐसा नहीं है कि हम 1-2-5 लोगों के साथ काम करें. ऑब्वियसली हम तो मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हैं. Till the time we're adding value to them, till the time we're adding value to the customers and helping both of them, you know, discover each other better, I don't think कभी भी ये problem होने वाली है. जब भी हम ऐसी कोशिश करेंगे तो I am sure कि कोई दूसरा आ जाएगा और बोलेगा कि मैं better कर रहा हूँ इससे. That's what is going to happen.
A lot of people who are watching us, they want to become entrepreneurs, business owners, right? So अभी क्या आजकल लोग entrepreneur बनना चाहते हैं by choice. You faced the problem and you became an entrepreneur. कि यार हमें ये प्रॉब्लम लगती है, चलो साथ में आते हैं, कुछ करते हैं, सोचेंगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, राइट. पर बहुत लोग अभी हैं जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट. दे जस्ट वॉन्ट टू बिकम कि यार ये मेरे सीनियर ये आई एम से जा चुके हैं, ये आईटी से जा चुके हैं, मुझे भी बनना है. ये पीडब्ल्यूसी है, मैं जानता था इनको, अब मुझे भी स्टार्टअप फाउंडर बनना है. बिकॉज इन्होंने इंडिया का सबसे पहला यू नो प्रॉपर्टी यूनिकॉर्न बना दिया, सो आई वी वॉन्ट टू ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस. दैट्स इट. दिस इज वाई पीपल वॉन्ट टू बिकम. सो पीपल वॉन्ट टू बिकम एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस. There's no problem. So, do you think कि जिसके पास कोई problem नहीं हो but just उनको एक lucrative career दिखता है, they should pursue entrepreneurship in a hope कि ढूंढते हैं, कुछ करते हैं, कि नहीं they should continue doing their job?
नहीं, I don't think कि देखिए, या तो problem उनको लगे कि हाँ हमें खुद कुछ problem है और उसे solve करते हैं, which I think many businesses are built like that, you know, कि हमने देखा कि ये problem है, हमने build किया, and I'm sure umpteen businesses उन्होंने इस तरह की चीजें करी होंगी. या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट यू हैव टू फाइंड सम प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड इफ नॉट योर्स, समबडी एल्सेस प्रॉब्लम एंड गेट दैट. आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना कोई दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं एक बिजनेस एक और शुरू कर देता हूँ. आई थिंक दैट्स वेरी डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है, मतलब
मी टू प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं,
जैसे फेसबुक है, फेसबुक डिडंट स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम बट इट वाज एबल टू बिल्ड अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस. बट दीज आर फ्यू एंड यू नो मोर डिफिकल्ट बिजनेसेस टू बिल्ड बिकॉज हियर यू आर नॉट यू हैव टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज आई थिंक much more psychological, much more easy to, it's not linear, it's not the way that you can think like that. So I think ki ya to aapko apni problem dhoondni padegi ya kisi aur ki problem dhoondni padegi aur usse solve karna padega, bina problem ke to bahut mushkil hai.
Par main isme ye bolna chahunga ki of course lucrative second part isme ki lucrative logon ko lagta hai isliye wo lagate hain aur lagna bhi chahiye lucrative, otherwise kisi ko motivation kya hoga. Par matlab jo bhi aapko audience mein bolna chahungi hai bahut difficult. बिकॉज आई विल जस्ट गिव यू माई एग्जाम्पल कि मैं ऑस्ट्रेलियन यूनियन बैंक के अंदर था एंड ANZ बैंक हैड अ वेरी वेरी कम्फर्टेबल जॉब, फॉरन बैंक, वेरी गुड सैलरी, वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ ऐसा खास करने को था नहीं जॉब समझ में आ गई तो.
तुम्हारे CEO सुन रहे हैं.
He would be happy know that he's giving good testimony for the job.
कुछ खास करना नहीं था.
कुछ खास काम करने को था.
बढ़िया बैठे हो आओ. CEO हमारा सब इजी कर देता हमारे लिए.
बढ़िया बैंक है, आप अच्छी सैलरी कमा रहे हो, कुछ खास ऐसा काम करने को है नहीं, आराम से टाइम पे घर जा रहे हो. अब उसके बाद वो जॉब छोड़ दी है और स्टार्टअप शुरू कर दिया. अब आप घर पे तो पहले तो 10 लोग फोन करेंगे, वाह यार तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिस्क ले रहे हो, तो काश हम भी करते. उसके बाद उसे फोन आने बंद, लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए. देन वन डे यू आर सिटिंग अलोन इन योर होम विद योर लेग्स फोल्डेड ऑन अ बेड विद योर कंप्यूटर ओपन एंड देयर आर सम 10 कस्टमर्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू आर वंडरिंग यार आज ऑफिस जाता ना तो इतने पैसे मिलते. और वो मिल नहीं रहे क्योंकि ना तो पैसे मिल रहे हैं, उल्टा आपको इन्वेस्टर से मिलने के लिए फ्लाइट टिकट में भी खर्चा जा रहा है, मार्केटिंग में भी खर्चा जा रहा है. तो आई थिंक लुक्रेटिव ऑफ कोर्स है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आई वुड से इज द परहैप्स द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, बट आई थिंक ओवर ग्लैमरस भी हो गया है. इट्स वेरी टफ.
इट्स टफ एंड या आई थिंक ओवर ग्लैमरस इज नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप. हर थोड़े टाइम में एक चीज का फेज आता है उसको ओवर ग्लैमरस करते हैं बिकॉज दैट सेल्स. जिसकी स्टोरी सेल करती है वो सेल होता है, राइट? बट डू यू थिंक कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड न्यू आइडियाज, कि तुम डेटा देखो, कि तुम क्या देखो, किससे तुमको पता चल सकता है, ऐसा कुछ है?
पर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि कल आई रिमेम्बर आई टॉकिंग वाज टॉकिंग टू अ पर्सन एंड ही इज अ फाउंडर इन अ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस.
ओके.
ही वाज सेइंग कि हमने जब सोचा तो उनको ऑटोमेटिकली आइडिया नहीं आया. जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना, उसने क्या बोला कि यार हमने सोचा कि आदमी सुबह उठता है ना, सारे एक्टिविटी लिखते हैं उठते से सोने तक. अच्छा मैं ब्रश करता हूँ तो क्या ब्रश नया चेंज कर सकते हैं क्या? एंड देन ही फिगर्ड आउट कि अच्छा इस पूरी जर्नी में ट्रांसपोर्टेशन में मुझे दिक्कत होती है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट कर सकते हैं क्या? तो सम पीपल थिंक लाइक दैट, सम पीपल मेक ह्यूज लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड देन गो वन बाय वन ऑन दैट. सम पीपल लुक एट कि US में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, वो परसेंटेज बेसिकली हमारा कम है क्या? कोई भी राइट तरीका नहीं है. सम पीपल जस्ट चांस डिस्कवरी कर लेते हैं.
सबकी अलग जर्नी होगी इसमें.
हम लोग जब बाहर से देखते हैं इट्स अ यूनिकॉर्न, मतलब इट्स बिलियन डॉलर स्टार्टअप, राइट? 7,500-8,000 crore का बिजनेस. वो पैसे फाउंडर्स कैसे होते नहीं है, राइट? इट्स नॉट द मनी विच यू गेट, बट लॉट ऑफ पीपल फील कि भाई वो यू नो फ्रॉम द आउटसाइड वाज 7,000 crore. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट फाउंडर्स आर स्टिल वर्किंग विद द सैलरीज ऑन एंड वो डे इन एंड डे आउट वर्क कर रहे हैं. लाइक दे आर प्रॉब्ली द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल विद द lowest approach to the money, like you know, lowest reach to the money.
Yeah,
like they don't have it. So can you shed light on this for everyone ki just because you've become a unicorn doesn't mean that you have 7,000 crore? Kya hota hai, kaise hota hai, like what is this game of becoming a unicorn? Where does the money go, where does the money come from, what is the money used for, aur kaise raise karte?
To unicorn to jaise ab listed company hai, market cap to listed company ki tarah hi hai. Haan, roz trade nahi ho raha. तो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर. या अदर वे टू से इज़ कि आज अगर नो ब्रोकर यूनिकॉर्न है, 1,000 million का वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब ये है कि आज अगर कोई इन्वेस्टर 10% शेयर लेता है नो ब्रोकर में तो वो $100 million देता है और वो देने के लिए खुश है. तो अगर किसी ने हमारा 10% शेयर लिए और हमें $100 million दिए तो 10 × 10 हमारा $1,000 million हमारा वैल्यूएशन हो गया. ये तो वैल्यूएशन हुआ. अब हर किसी की शेयर होल्डिंग है, मेरी, सौरभ की, अखिल की, हम सबकी शेयर होल्डिंग इन्वेस्टर्स की, वो परसेंटेज है. सपोज किसी की शेयर होल्डिंग अगर 5% है तो वो $1 billion का या 1,000 million का 5% वो ओन करता है. पर वो उसके पास कैश नहीं है, वो कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है। तो जैसे आपकी दुकान होती है, दुकान में दो भाई हैं, 50-50% हिस्सेदारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कम और कोई उस दुकान को खरीदने को तैयार है 1 करोड़ रुपए, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के पास 50 लाख कैश है आज, पर हाँ अगर वो बेचे तो 50 लाख के इक्विवेलेंट है।
या आप शेयर मार्केट की तरह समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी है जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ है और उसमें अगर आपका 5% शेयर होल्डिंग है तो आपकी पास 50 करोड़ के शेयर्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसे आज बेच रहे हैं, आपके पास कैश नहीं है, उतने का शेयर्स है आपके पास,
इज इज अ वैल्यू राइट। बट लेट्स से अब जैसे मैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू बोथ हैव दी 100% ऑफ द कंपनी, आपके पास 4 लोग हैं, 25-25% चारों के पास है, एंड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज 1000 करोड़, अब मुझे 10% चाहिए राइट, तो मेरे को 100 करोड़ चाहिए, अब मैं 100 करोड़ डाल के 10% लेता हूँ, तो वो 100 करोड़ जाता किसके पास है?
वो कंपनी में जाता है, वो कंपनी के अंदर पैसा आता है।
बट aren't you सब अपना अपना 2.5% शेयर देते हैं?
हाँ, तो आप ये समझिए कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो बोल रहे हैं कि यार हम 10% अपना बेच के, एवरीबॉडी अपना 10% बेच रहा है और कंपनी में पैसे ला रहा है जिससे कि कंपनी और आगे बढ़ सके, जिससे 1000 करोड़ की अगर कंपनी है अभी वो 5000 करोड़ की बन सके, 10000 करोड़ की बन सके। सो यू ब्रिंगिंग दैट 100 करोड़ इन टू द कंपनी एंड देन यू यूज दैट मनी फॉर कंपनी ऑपरेशन, कि आप उससे कस्टमर एक्विजिशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जो भी आप कंपनी के
अभी पैसा कंपनी के पास जाते हैं कंपनी के और एक्सपैंड करने के लिए, एक तरीके से बिजनेस लोन जैसे पीपल लेते हैं, बट नॉट अ लोन,
इक्विटी है, मतलब
इक्विटी इक्विटी में
आप हिस्सेदारी समझिए कि एक कंपनी में दुकान अगर होती तो उसमें कितने हिस्सेदार होते, तो
हिस्सेदारी खरीद लिया डाल, अब जो ये पैसा आया राइट, सो वेयर डज द फाउंडर मेक मनी? लेट्स से फाउंडर्स यू वर 3 पीपल टुगेदर, यू स्टार्टेड इट, अब व्हेन विल यू मेक मनी, और व्हेन विल लाइक व्हाट इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर यू गाइस? जैसे 10% आता रहा है वो कंपनी में ही आते जा रहे हैं, एंड यू गाइस गेट सैलरीज, तो पहले जॉब में भी मिल रही थी, अब इधर सैलरी वुड यू गेट ओनली
जॉब से? कम
जॉब से तो कभी मिल रही है
तो अगर कम सैलरी मिल रही है, ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ रहा है, आई गेट की फाइनेंशियल इंसेंटिव एक दिन बहुत बड़ा होगा, पर क्या सिर्फ उसी दिन के लिए फाउंडर काम करता है कि जिस दिन या तो मेरी कंपनी एक्वायर हो जाए या पब्लिक हो जाए?
आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या तो हम IPO कर लेंगे, पब्लिक हो जाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स दैट मनी बिकम्स मच मोर लिक्विड, क्यों आप कभी भी बेच सकते हैं वो सब चीज़ें, या फिर कोई कंपनी हमें लार्जर वैल्यूएशन पे खरीद लेगी। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, बिकॉज दैट्स वेयर यू कैन सी कि यार जो मैंने इतने साल, मतलब इतने साल लगाए हैं, उसका रियल वैल्यू, रियल रिजल्ट तो तभी आ रहा है।
तो वो एंड पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट डे टू डे पे बहुत ज़्यादा खुशी है, बिकॉज यू आर रनिंग योर बिजनेस, यू आर डूइंग थिंग्स विच यू वांट, यू कैन डू एनी एक्सपेरिमेंट, यू कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द कंपनी द वे इन विच यू वांट, एंड नो, देर इज नो बॉस, देर इज नो पॉलिटिक्स, कंप्लीट मेरिटोक्रेसी, नोबडी इज माइक्रो मैनेजिंग यू। तो जो जो जॉब में चीज़ें लोग पसंद नहीं होती हैं वो साथ, उनमें से कोई भी चीज़ बेसिकली नहीं है, तो
काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस है कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप नई चीजें ट्राई कर सकते हैं।
मोर देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज द फ्रीडम व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडर्स,
यस,
एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज एट द एंड ऑफ द डे, वो 10 साल 15 साल 20 साल जब वो काम करता है उसके बाद का रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा है।
एक चीज और भी है कि बहुत ही ह्यूज सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्राइड मिलता है कि यार हमारे ये सब करने की वजह से इतने लोगों को घर मिल रहा है, इतने लोगों को पैकेज रिमूवर्स मिल रहा है, हमने लोगों की लाइफ इतनी अच्छी कर दी है। That I think is also something which really makes us very very proud.
और जो आपके टीम में लोग हैं, जो आपके hundreds of people जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत joy मिलता है कि आप मिलके साथ में कुछ बना रहे हैं और उस बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो एक है financial destination, of course founder salary लेते हैं, उतनी ज़्यादा aggressive नहीं जितनी कि generally बाहर market में लेते, but that is taken care of at a reasonable level and there is a big reward at the end of the road. बट एवरी डे जर्नी में जो इंडिपेंडेंस है और जो खुशी है टू हेल्प कस्टमर्स, टू वर्क विद ग्रेट ब्राइट पीपल एंड टू सी अ थिंग बिकमिंग बिग, वो बहुत ही वैल्यूएबल है।
यू टॉक टू एनी वन हुज नॉट इमोशनल अबाउट रियल स्टेट या एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, या इफ यू लुक एट द हिस्ट्री एंड द डेटा एंड द पॉइंट्स और कि कितना ग्रोथ दिया रियल स्टेट ने, नहीं दिया राइट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स नॉट इन रियल स्टेट राइट, कि घर खरीदना लाइक लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स आउटसाइड, लेट्स से पीपल लाइक रॉबर्ट कियोसाकी ने, तो बोलते हैं कि घर में खर्चा करना ही नहीं चाहिए, घर इज अ लाइबिलिटी राइट, एंड वी इंडियंस बिलीव इन बाइंग हाउसेस, हमें अच्छा ही नहीं लगता कि अगर हमारा खुद का घर नहीं होता तो राइट, आई मीन बचपन से मैं तो यही सुनता आया हूँ मेरे घर वालों से कि दी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज स्टेबल हाउस, लाइक हैविंग योर ओन होम, हैविंग योर ओन कार, लिविंग अ स्टेबल लाइफ. अगर मतलब वो घर हटा दो तो तुम सक्सेसफुल ही नहीं हो गए. तुम्हारे पास होंगे 100 करोड़, तुम नहीं हो सक्सेसफुल, तुम्हारा घर नहीं है. राइट. सो डू यू थिंक इट मेक्स सेंस, लाइक हाउ इज रियल स्टेट अ गुड वे टू इन्वेस्ट, और इज इट गुड वे टू इन्वेस्ट?
तो जिनके बात करें रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने काफी पैसा रियल एस्टेट में बनाया है, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस करके. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू नो व्हाट यू लुकिंग एट. ऑफ कोर्स अगर आप पिछला 10 साल देखेंगे तो मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, स्टॉक मार्केट्स ने. बट हर चीज की साइकिल है, तो अगर आप उससे पहला डिकेड देखेंगे तो रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ साइकिल विच इज देयर, एंड राइट नाउ वी फील कि रियल एस्टेट इज ऑन एन अप साइकिल. तो इस टाइम अगर कोई इन्वेस्ट करेगा इस डिकेड में, आई थिंक रियल एस्टेट इज गोइंग टू गिव गुड रिटर्न्स. एंड यू ऑल्सो नीड टू बैलेंस, क्योंकि आप सारा का सारा पैसा एक जगह तो नहीं डालेंगे. कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में 17% डाउन है, तो इट विल हर्ट अ लॉट. एंड अगर आप इसे देखें जो रियल एस्टेट है, एटलीस्ट वो टेंशन नहीं देता, क्योंकि आप रोज प्राइस नहीं दिख रहा आपको टिकर पे कि अभी इतना था आज इतना हो गया, ऐसा नहीं दिख रहा है. इट्स अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट विच कीप्स ऑन ग्रोइंग. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म क्या सोच रहे हैं, तो आई थिंक दिस डिकेड इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर रियल एस्टेट.
इसमें दो चीज़ें और हैं. एक तो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर ना आप लोन लेने बहुत कंफर्टेबल हैं, तो आपका बेड साइज बहुत बड़ा हो जाता है. आप अगर 20 लाख रुपए इक्विटी मार्केट में डालते पर यहाँ 20 लाख का डाउन पेमेंट करके 1 करोड़ का घर लेके 1 करोड़ की बेट ले रहे हो, बहुत कंफर्टेबल है. एक तो ये है, 1 करोड़ आपका 1 करोड़ बेसिकली 10% ग्रो होगा, तो 10 लाख अगले एक साल में 10 लाख आप कमा लेंगे. आपको निकलना हो तो आप निकल लीजिए 20 लाख की इक्विटी पे. एक तो वो है. दूसरा ये है कि जैसे आपने मुझे भी क्वेश्चन पूछना, तो आपने भी घर बोला, लेकिन बात होती है प्रॉपर्टी की. तो कमर्शियल जो रियल एस्टेट है ना, उसको समहाउ हम लोग बहुत सारे इंडियंस ना इग्नोर करते हैं. कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब कोई बड़ा इन्फोसिस ऑफिस नहीं होता. कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब 100 स्क्वायर फुट की शॉप होता है जो आपको सड़क पर दिखती है. और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ना अपना पहला घर लेने के बाद, चूंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल जरूरत भी है, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल में. कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे 100 स्क्वायर फीट की, 200 स्क्वायर फीट की, सब प्राइस रेंज में अवेलेबल है, 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक. उसमें बहुत अच्छे रिटर्न है, टिपिकली 8-12% रेंटल यील्ड है पर ईयर. तो आप बेसिकली, और आपको जो प्रॉपर्टी एप्लीकेशन मिल रहा है वो भी है. तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि कमर्शियल को नहीं भूलें. हम लोग कमर्शियल को बड़ा सोच के ना कंसिडरेशन सेट से हटा देते हैं.
ओके, सो विथ योर स्टार्टअप यू मस्ट बी गेटिंग एक्सपोज टू इंडिया, द होल इंडियाज रियल एस्टेट मार्केट, एंड यू मस्ट बी रीडिंग अबाउट लॉट ऑफ स्टफ. और बहुत चीजें पता चल रही होगी. राइट. व्हाट डू यू थिंक, विच अदर टॉप बूमिंग मार्केट्स, रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया, लाइक सिटी वाइज और टाउन वाइज, लाइक 3-4, डू यू थिंक?
So I think सबसे ज्यादा बूमिंग मार्केट तो अभी हैदराबाद है.
Okay, residential and commercial दोनों को अलग अलग करते हैं. So let's talk about,
मैं residential बताता हूँ, मुझे residential के बारे में ज्यादा मालूम है. तो हैदराबाद is booming in residential. तो I think what has happened is कि जो first decade of this century का boom हुआ था, हैदराबाद ने पूरा मिस कर दिया हुआ, क्योंकि उस टाइम पे वो तेलंगाना वाला इशू चल रहा था. एंड जब तेलंगाना एक बार बन गया 2014, एंड उसके बाद थोड़े आई थिंक ऊपर नीचे हुआ, बट फॉर द लास्ट 3-4 years, 5 years, the amount of construction that is happening, the number of buyers that are there in the market, I think it's humongous. So the market has done really well in the last 5 years in Hyderabad. Similar thing, I also think Pune is also seeing a very good growth in terms of real estate, in terms of price appreciation. Again, Bombay ke paas hai wo city, but price is much lower than Bombay. So a lot of investment from Bombay also flows in Pune. एंड जो पूरे का पूरा आपका ये हिंजेवाड़ी के आसपास पूरा एरिया है, वाकड़ एंड ऑल दैट, आर सीइंग अ ह्यूज डेवलपमेंट. एंड सिमिलरली द अदर साइड ऑफ द टाउन विच इज खराड़ी एंड ऑल, दैट्स सीइंग अ ह्यूज बूम. बैंगलोर ऑफ कोर्स अगेन, बिकॉज द सिटी इज ग्रोइंग, देयर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स विच आर डूइंग वेरी वेल. सो वी अगेन सी कि यहाँ पे काफी अच्छा कर रहा है.
प्राइस एप्रिसिएशन डू यू फील इन बैंगलोर स्टिल पॉसिबल?
या स्पेशली आई थिंक जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स वाले एरिया है, जैसे कि सरजापुर रोड जहाँ पे आप लोग अभी हैं, इसमें आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर एयरपोर्ट के पास काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है. सो दीज टू लोकेशंस वी थिंक आर कैन बी गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस.
एंड व्हाट अबाउट कमर्शियल? लाइक कमर्शियल, बिकॉज कमर्शियल में योर अपर बेनिफिट इज रेंटल यील्ड रादर देन प्राइस एप्रिसिएशन.
करेक्ट. तो प्राइस एप्रिसिएशन तो काफ़ी कुछ मिरर कर रहा है रेजिडेंशियल का. तो पूना और हैदराबाद दोनों मार्केट अच्छा कर रहे हैं एप्रिसिएशन में. बट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये माइक्रो डिसीजन है. अच्छी प्रॉपर्टीज कमर्शियल की हर शहर में अवेलेबल है. ये ब्यूटी है इसकी. इसी सड़क पे जहां आप हम लोग बात कर रहे हैं उसी पे निकल जाएंगे, अगर वहां पे आप खूब फुटफॉल्स देख रहे हो और आपके पास एक टेनेंट है जो कि जिसने लॉन्ग टर्म लीज साइन करी हुई है और अच्छी डिसेंट ब्रांड है, वो पर्टिकुलर शॉप ग्रेट है आपके लिए, और ऐसी शॉप आपको हर लोकेलिटी में ऑलमोस्ट मिल जाएगी जो आपको अच्छी डील मिल रही हो, जहां पे आपका प्राइस और जो रेंटल है वो 8% बन रहा हो, वो अच्छा कंसिडरेशन सेट है बेट लेने के लिए।
हाउ डू यू फिगर आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक व्हाट डू यू रीड, आर यू गेटिंग लाइक कोचेस, डू यू हैव बिजनेस कोचेस, इतना बिकॉज यू आर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यू आर बिल्डिंग दिस, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज इन हिंजवाड़ी,
राइट? ये सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड,
सिविल इंजीनियर, ही कैन टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, लेट्स से, सो कहां से ये सब, लाइक व्हाट वाज द इनिशियल पॉइंट, बिकॉज आधे से ज्यादा टाइम हम लोगों का मेंटल ब्लॉक ही होता है कि यार मैंने तो है ना, जैसे आई वाज लाइक I've only heard about media business, content creation. मैं वही पढ़ा है तो मैं नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी का बिजनेस, मैं नहीं कर सकता फिनटेक में या एडटेक में या प्रॉपर्टी टेक में, मैं आई कांट बिल्ड थिंग्स बिकॉज दैट्स द बैकग्राउंड व्हिच आई एम थिंकिंग ऑफ, राइट?
पर ये ना बेनिफिट भी है, अगर आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी बहुत पता नहीं है तो आप बायस भी नहीं हो, तो आप एकदम आर्बिट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार ऐसा क्यों नहीं करें, और आपको कोई मना करने वाला नहीं है क्योंकि आपका मन किसी ने बनाया नहीं है। सो नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ some industry may also be a very big benefit, because then you can look at the industry from a clean slate and say ki yaar aisa kyun nahi hota. For example, no broker wala business kahin nahi hota US or China mein, aur humse investor yahi poochte the ki US mein kyun nahi wo company badi hai, China mein kyun nahi badi hai, and like hame nahi pata, par hame pata as a Indian consumer hame pareshan hai hum log brokers se, because hamare ye incident rahe. और रियल, और वंस यू गेट इनटू इट देन यू जस्ट कीप ऑन लिस्टिंग टू व्हाट कस्टमर इज सेइंग। तो हमें कस्टमर ने बोला कि तुम रेंटल एग्रीमेंट करा दो, तो हमने वो सर्विस स्टार्ट कर ली। कस्टमर ने बोला तुम पैकर मूवर करो, तो हमने वो स्टार्ट कर दिया। सो इफ यू आर विलिंग टू लर्न द वे इन विच यू आर लर्निंग एंड यू लिसन टू कस्टमर्स, देन यू फिगर इट आउट।
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ, आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट IIT अर्लियर, तो और कुछ उन्होंने सिखाया केमिकल इंजीनियरिंग से, बाकी कुछ नहीं सीखा, बट ये जरूर सीखा कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। So, you know, when you look at a problem, you say ki yaar,
what is first principle?
First principle is ki ekdam break kar dijiye aap problem ko. Ki acha ye problem hai, ye kyun ho rahi hai? Kya iska solution ho sakta hai, nahi ho sakta hai? Because agar aap already real estate mein hai, to aapka mindset is Amit Karai. Mindset hai ki yaar broker ke bina to hota hi nahi hai transaction, to kabhi bhi nahi ho sakta. But when you're starting with the first principle, you say ki acha kyun nahi ho sakta iske bina? Kya problem hai? Kahan pe ja ke atakta hai? So you start asking those questions, breaking into smaller pieces and trying to solve those pieces one by one. So I think that has really helped. And second is of course, customers, agar aap baat nahi karenge, to aap piche reh jayenge. So you have to keep on speaking to the customers. Even now, I think cumulatively, we've been speaking to hundreds of customers on a regular basis to understand ki wo kya bol rahe hain, unke kya suggestions hain, hamare saath kya problem hai, unki dusri jagah kya problems hain. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमने ये बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग जब स्टार्टअप में कूद जाते हैं तो वो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं करते हैं। ये आई थिंक काफी मिसिंग पार्ट है, बिकॉज वी टॉक अ लॉट अबाउट कि आइडिया क्या होना चाहिए, को फाउंडर होना चाहिए कि नहीं, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप सपोज एक साल तो करेंगे उस पर फाइट मारेंगे, अगर आप छह महीने करें तो एनी बहुत कम पीरियड, एटलीस्ट यू हैव टू पुट अप अ फाइट फॉर वन ईयर टू ईयर, बिकॉज शायद आप पिवट करेंगे, आप उससे स्मूथन आउट करेंगे। तो अगले एक से दो साल की आपकी EMIs के पैसे, आपके नॉर्मल खर्चे के पैसे और आपको जो बिजनेस में डालना होगा, वो पैसे इकट्ठे करना सबसे पहले जरूरी है। या अपने एक्सपेंसेस आप कम कर लो, अलग बात है, चाहे वो फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, अपनी जॉब से आप इकट्ठे करो। मैनी पीपल जस्ट जंप इन टू स्टार्टअप विदाउट डूइंग दिस बेसिक मैथ्स कि यार तीन महीने बाद पैसे बचेंगे ही नहीं, और फिर आप बहुत निराश हो जाओगे दैट यार मैं कर नहीं पाया, बिकॉज तीन महीने में आपकी फंडिंग या आपका आइडिया टेक ऑफ नहीं कर सकता। So that doing that basic maths, I think that's also a very underspoken topic.
Yeah, it's not spoken at all. Like nobody talks. If we talk about ideas, we talk about getting hypothesis validated, co-founder होना चाहिए, tech team होना चाहिए, TAM होना
चाहिए, पैसे
भी होने चाहिए कि भाई एक साल तक कुछ नहीं मिलने वाला, तो तू देख ले तू prepared है कि नहीं है, because that's it, that is important. Your side hustle should keep going on.
या तो पैसे होने चाहिए जैसे अमित ने plan किया, या मेरे जैसा होना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड काम कर रही थी तो वो मुझे फंड कर रही थी और उससे मैंने शादी कर ली थी।
गाइस दिस इज द बेस्ट टिप ऑन द एंटायर पॉडकास्ट, यू नीड टू डू दिस, इट्स टाइम।
हम लोगों को बहुत दुख होता था फ्लाइट के टिकट के पैसे देने में भी, अब VC ने बुला लिया आ जाओ बॉम्बे, अब बैंगलोर से आप बॉम्बे फ्लाइट ले रहे हो, अब वो मीटिंग का पता नहीं मुझे जूनियर के साथ है। तो इवन दी स्मॉल थिंग्स बेसिकली
प्लानिंग जरूरी है, इधर पैसे की प्लानिंग या गर्लफ्रेंड की प्लानिंग
होनी चाहिए,
प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। इफ नॉट दिस इंडस्ट्री वेर यू ऑपरेटिंग रियल स्टेट, नॉट इफ नॉट रियल स्टेट, वेयर वुड यू पुट मनी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन इंडिया?
प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर टेक टू बी tech to solve them. The problems can be in insurance, it can be in equity market, it can be anywhere. It can be about food, it can be about fashion. But technology which helps you deliver those solutions efficiently, cheaper, better quality, tech as a theme.
I get the tech as a theme. Tell me, I'm just asking, agar kisi ko ye samajhna ho, get, okay, that how they can use tech in order to grow or understand problems, or kaun si problem tech se solve hoti, is there anything with where they can learn about all of this? Because we had one podcast where Anupam Mittal said that in just few years, there's going to be either tech-enabled businesses or tech businesses. कोई भी बिजनेस ऐसा होने नहीं वाला जो या तो चलेगा टेक से या टेक ही होगा और कुछ होगा नहीं, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज द कोर पार्ट. तो इस टाइम पे जो ये देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कहाँ से सीख सकते हैं? कुछ पढ़ सकते हैं कहीं पे? या यू थिंक देर आर ब्लॉग, देर आर पीपल, देर आर बुक्स, देर आर पॉडकास्ट, और देयर इज गूगल सर्च, वो कहाँ पे क्या करें? वॉट शुड दे सर्च फॉर? बिकॉज आई रियली वॉन्ट पीपल टू लर्न थिंग्स.
आई थिंक मतलब आई डोंट नो कितना लोग करना चाहेंगे, बट मैं काफ़ी इन टेक्नोलॉजी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स या एनुअल प्रेजेंटेशंस देखता हूँ, जिससे मुझे मालूम चलता है कि वो लोग कैसा सोच रहे हैं. यू नो, एंड लॉट ऑफ दीज लेटर्स आल्सो यू कैन फाइंड, कि जेफ बेजोस के लेटर्स ऑब्वियसली आर वेरी वेरी फेमस, हाउ ही थॉट अबाउट द एंटायर थिंग. बट अगर आप ये भी देखेंगे कि जो आपको लगता है कि अच्छी कंपनीज हैं, उनके एनुअल प्रेजेंटेशंस, उनकी क्या थीम्स है, वो कैसा सोच रहे हैं, दैट विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग.
और एक और आइडिया ये है कि अभी जैसी किसी की फंडिंग न्यूज आती है तो खूब आर्टिकल छपते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, कुछ आपको बोझिल काम नहीं करना. जिस किसी की लेटेस्ट फंडिंग हुई है टेक सेक्टर के अंदर, उसके बारे में डिटेल में पढ़ के वो धंधा समझने की कोशिश कर लीजिए.
या
तो कम से कम ऐसे इंक्रीमेंटल आपकी नॉलेज बिल्ड हो रही है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर ओपनिंग न्यूज़पेपर, समबडी इज गेटिंग फंडेड, यू आर लर्निंग मोर अबाउट इट, और जनरली आपका इंटेंशन, आपका एप्टीट्यूड और डेवलप हो रहा है.
या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग दिस, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग एंड गिविंग मी एडवाइसेस, प्लस थैंक्स फॉर randomly answering all the like uncluttered thoughts which I had. कहाँ से मैं क्या लेके जाता, क्या start करता हूँ. Thanks for bearing it with me. I really enjoyed talking with you guys. Thanks for being extremely candid.
Thanks, it was a pleasure.
Thank you for staying till the end. After listening to this, even if you feel just 1% smarter, then share this with all your friends and family, because you never know that you might get your next $1 billion idea while listening to this podcast.